दुर्बल की शक्ति। दुर्बल की शक्ति अत्यंत प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा के किसी राज्य में किष्किंधा नामक एक नगर था। यह नगर एक विशाल पहाड़ की तलहटी में था। पहाड़ के बहुत ऊपर एक विशाल झील थी, परंतु नगर में पानी की कमी सदा बनी रहती थी। नगर का एकमात्र जलाशय जल की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ था। झील से पानी लाना असंभव था, क्योंकि वो लगभग एक कोस ऊपर थी और चारों ओर 20 हाथ ऊंचे एवं 40 हाथ मोटे पहाड़ से घिरी थी। उसको भेदना मनुष्य की शक्ति से बाहर की बात थी। अकस्मात ही एक बार सूखा पड़ गया। जलाशय में पानी तो था, परंतु नगर भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि जब पानी समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। धरती के नीचे दूर दूर तक पथरीली चट्टानें थी। कुआं खोदने से भी जल मिलना संभव नहीं था। एक दिन लोगों ने देखा कि एक क्षीणकाय वृद्ध हाथ में खंता, पहाड़ खोदने का फावड़ानुमा अस्त्र, वो लिए पहाड़ की ओर जा रहा है। लोगों ने पूछा, बाबा ये खंता लेकर कहां जा रहे हो?
नगर में पानी ना जाने कब समाप्त हो जाए,
वृद्ध ने कहा।
कहीं ना कहीं से पानी का प्रबंध करना आवश्यक है। मैं पहाड़ में नहर खोदकर पानी लाने जा रहा हूं।
तुम? यत्र तत्र बैठे लोगों के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा,
तुम नहर खोदोगे?
क्यों, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? जब भागीरथ मानसरोवर से गंगा नदी को खोदकर संपूर्ण आर्यावर्ता के जल संकट को दूर कर सकते हैं, तो क्या मैं इस तुच्छ पहाड़ी से भी नहर नहीं खोद सकता?
वृद्ध उन्हें हंसता हुआ छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में ये बात नगर भर में फैल गई कि एक दुर्बल वृद्ध पहाड़ खोदने गया है। लोग इस मूर्ख को देखने के लिए समूह में पहाड़ पर पहुंचने लगे। वृद्ध उनकी ओर से बेखबर झील के चारों ओर की पथरीली दीवार पर एक स्थान पर छेद करने के लिए खंता चला रहा था। वो एक एक इंच के पत्थर के टुकड़े को काट काट कर निकाल रहा था।
बाबा,
एक युवक ने उपहास उड़ाते हुए पूछा,
अरे इस तरह तो तुम मृत्यु तक एक हाथ से अधिक नहीं काट पाओगे, फिर पानी लेकर क्या करोगे?
बेटा,
वृद्ध ने पत्थर काटते हुए गंभीर स्वर में कहा,
राजा सागर अपने 60,000 श्रमिकों के साथ मानसरोवर के जल का रुख मोड़ने के लिए चट्टानों को बांधते समय उनसे दबकर मर गए। उनके पौत्र भागीरथ ने तो कभी ये नहीं सोचा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो जल का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
वो आज नहीं है, किंतु उनका श्रम आज भी सभी को तृप्त कर रहा है। युवक सकपक आ गया। अकस्मात ही उसकी विचारधारा परिवर्तित हो गई। उसने सोचा,
श्रम के फल के बारे में सोचते हुए यदि हम श्रम ही ना करें तो फल कैसे प्राप्त हो सकता है? इस कार्य को करते हुए यदि प्राण चले जाते हैं तो यश मिलेगा, सफलता तो निश्चय ही नहीं मिलेगी। किंतु कुछ लोग इसी प्रकार अपने प्राणों की आहुति इस कार्य के लिए देने लगे तो कुछ पीढ़ियों के पश्चात नगर का जल संकट दूर हो जाएगा। उसने घर से खंता मंगवाया और वृद्ध के साथ जुट गया। युवक शक्तिशाली था। छोटे छोटे ही सही, पर पत्थर कटने लगे। सायंकाल तक पहाड़ एक अंगुल गहराई तक तीन हाथ चौड़ा कट चुका था। अगले दिन जब वृद्ध और युवक पुनः पहाड़ की ओर चले तो लोगों ने उन्हें देखा। कुछ ने पुनः उपहास उड़ाना प्रारंभ किया, किंतु कुछ युवकों ने कहा,
इन दोनों मिलकर एक दिन में एक अंगुल मोटाई तक पहाड़ काट डाला, हम इनका साथ दें तो इस वर्ष ना सही 10-5 वर्षों के बाद ही सही पानी तक पहाड़ काट ही देंगे। इस झील में हिमालय का बर्फ पिघलकर आता है, उसका पानी कभी नहीं सूखता, नगर का जल संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
करीब 20 सिर फिरे युवक उनका साथ देने चले गए। उस दिन वो छेद आधा हाथ तक कट गया। अगले दिन इन सिर फिरों की संख्या 200 हो गई और पहाड़ 2 हाथ कट गया। तमाशा देखने वाली भीड़ में कानाफूसी होने लगी। 3 दिन में 2 हाथ तो 40 हाथ कटने में तो मात्र 2 महीने लगेंगे। अकस्मात ही उन्हें लगा कि जल संकट से छुटकारा संभव है, ये सिर फिरे दीवार काट लेंगे तो नहर भी 2-4 वर्ष में खोद लेंगे। जो कार्य असंभव दिखाई दे रहा था वो अचानक ही सबको संभव दिखाई देने लगा, मानो सब कुछ परिवर्तित हो गया। 20,000 की जनसंख्या वाले उस नगर के बच्चे, बूढ़े, युवा सभी वहां पहुंच गए। स्त्रियों ने पत्थर हटाने में उनकी सहायता करनी प्रारंभ कर दी। 2 महीने पश्चात ही 4 फीट चौड़ी 2 फीट गहरी नहर बन गई। उसमें झील का पानी बहने लगा। जलाशय तो भर ही गया, नगर के पास उपलब्ध 1,000 एकड़ असिंचित भूमि में भी जल पहुंचने लगा। जहां कोई फसल नहीं होती थी वहां सोना बरसने लगा। लोगों ने उस दुर्बल वृद्ध के सम्मान में एक विशाल जनसभा बुलवाई। जब उसे सम्मानित किया गया तो उसने कहा,
आप लोग मेरा नहीं अपने सामूहिक श्रम का सम्मान करें। मेरा उद्देश्य तो आपको इस शक्ति से परिचित कराना मात्र था। अपने लिए तो सभी श्रम करते हैं, किंतु सामूहिक श्रम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, किंतु सामूहिक श्रम के बिना सामूहिक समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। एक बड़े गुड़ का ढेला एक चींटी नहीं खींच सकती, तब वो समूह में आकर उसे ले जाती है। मैं तो यही तमाशा देखकर पहाड़ काटने चल पड़ा था। मैं जानता था कि मनुष्य चींटी नहीं है, उसे समझाना कठिन है। यही कारण है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सोचा था कि मेरा प्रयत्न थोड़ा भी सफल हुआ तो सभी स्वयं साथ देंगे।